ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने बच्चों को अपनी अवस्था को मजबूत बनाने के लिए विशेष ध्यान खिंचवाया है ड्रामा की पॉइंट पर। बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार सब चल रहा है, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। कभी कभी कई बच्चे कच्चे होते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो बच्चों को चिंतन नहीं करना है कि ये छोड़ करके क्यों गया, कैसे गया। तो बाबा ने कहा ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। दूसरी बात, बाबा ने बच्चों को सावधानी दी। कल भी बाबा ने कहा माया बिल्ले से सावधान रहना है। तो आज भी बाबा ने कहा कि माया जो है वो बच्चों के सामने खड़ी है, इसलिए माया के प्रभाव में आकर के अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। इस बात का बच्चों को ध्यान देना है। और बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर के अपनी चेकिंग भी करनी है। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 30 जुलाई 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे माया दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। मीठे बच्चे माया तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अब तकदीर को लकीर तो नहीं लगानी है ना बच्चों को, और ही तकदीर को बहुत चमकता हुआ बनाना है। आज का प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? इसका उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई भी जंगल में नहीं जाना। पहले जमाने में जाते थे ना लोग सन्यासी आदि, बाबा कहते अभी वो भी नहीं जाते हैं, बच्चों को तो बाबा कभी जंगल में भेजते ही नहीं हैं। तो बाबा बता रहे हैं इसका उत्तर पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन दो शब्दों में सारी तुम्हारी पढ़ाई आ जाती है। आज ओम शांति, ब्रह्मा बाप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आज ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा कहते ओम शांति। ब्रह्मा बाप भी कह सकते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग, तो बच्चे बोलो बाबा गुड मॉर्निंग, बोलो बाबा गुड मॉर्निंग। अच्छा, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्स देना पड़े। बाबा ने गुड मॉर्निंग किया, ओम शांति किया, तो बच्चों का काम क्या है? वैसे भी दुनिया में लौकिक में कोई मिलते हैं ना, कोई कुछ कहता है तो उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप भी ब्रह्मा द्वारा कहते हैं बच्चे गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्स देना पड़े। यहाँ है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यहाँ तो बाबा के सब पुराने बच्चे बैठे हैं। अच्छा, जो पहली बार मधुबन आए बात करा करो, पहली बार चार पांच हैं। अच्छा, हैं तो बाबा के पक्के हैं। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ न कुछ पूछते रहेंगे, ये तो पढ़ाई है। भगवानों वाच्य भी लिखा हुआ है, भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते रहते। कौन सी बात? पढ़ाने वाला शिव बाबा है, वही निराकार है, तो बाबा कहते ये बात बाबा अच्छी रीति पक्का कराते रहते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। यहाँ तो वे बात ही नहीं है, बाबा के घर में आए यहाँ तो माया की बात ही नहीं है, माया का जोर तो बाहर है ना, यहाँ तो वे बात ही नहीं। बाप तो समझाते हैं, जिन्होंने कलप पहले वर्षा लिया है वह आप पे ही आ जाए, वह आप पे ही आ जाएंगे। बाबा पक्का करा रहे हैं कि जिन्होंने कलप पहले वर्षा लिया है वह आप पे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला गया इनको पकड़े, कोई छोड़ के चला जाता तो उसके पीछे लगे रहते, पीछे लगे रहते, और वो क्या करता है और पीछे से भाग जाता है। ऐसे भी कई होते हैं, क्या होता है ज्ञान में नहीं चलते हैं, लगे रहते हैं इनको ज्ञान में गिलाए, इनको ज्ञान में, भल ज्ञान सुनाओ समय पर तो वो आएंगे ना। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप तो समझते जिन्होंने कलप पहले वर्षा लिया है वह आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला गया इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए, चला गया तो अब क्या करेंगे, कितना पकड़ेंगे, जब उसको रियलाइज होगा तब तो आएगा। कई ऐसे चले गए थोड़े टाइम के बाद फिर आ जाते हैं, रियलाइज करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो अवस्था तो नहीं रहती ना, कितना भी ज्ञानी बन जाए कितना भी योगी बन जाए वो तो नहीं रहता ना। तो बाबा कहते सोचो ही नहीं, चला गया तो चला जाए, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो बच्चे माँ बाप के पास आते हैं वर्षे की लालच पर, है किसको लालच वर्षे की? बाबा कहते बच्चे आते किस लिए, है किसको लालच, जिसको लालच हाथ खड़ा करो। अरे लालच क्या अधिकार है, बोलो ना, हाथ खड़ा करो, अधिकार है ना। वर्षा तो हमें मिलेगा ही, लेकिन उसमें ऊंच पद पाना है, चला जाए तो चला जाए। यहाँ तो बच्चे माँ बाप के पास आते हैं वर्षे की लालच पर। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा? वो तो गरीब का बच्चा अमीर के पास एडॉप्ट होगा, साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतनी धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएगा? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना हम उनका बनेंगे? बाबा इतना ऊंच बनाते, इतनी प्राप्ति कराते, तो क्यों ना हम उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है ना, अब बाबा के क्यों बने, सुख शांति और भविष्य में भी ऊंच पद पाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हर एक बात में लालच रहती है, ये लालच कौन सी है, दुख देने वाली या शुभ है? हैं, ये तो सुख देने वाली लालच है ना, हर एक बात में लालच रहती है ना। तो बाबा कहते हैं जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी, लालच मीन्स उतना बड़ा पद मिलेगा। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम हमको हमसे फिर 5000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते। बाबा ने बच्चों को एडॉप्ट किया और बच्चे बाबा को अपना बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हमको, तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। अच्छा, जो कहते हैं बाबा आपके, हाथ खड़ा करो, बाबा हमारा हम बाबा के, बोलो बाबा हमारा हम बाबा के। तो बाबा सुन रहे हैं। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5,000 वर्ष पहले मौफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी आपके ही बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हो। दादी के टाइम पर दादी गिनती कराती थी कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, लिस्ट निकालते थे और अभी भी निकालते रहते हैं और इतने बढ़ते जाते हैं, कभी कभी लिस्ट निकालने में भी थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है। तो बाबा कहती हैं तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ हो। प्रजापिता तो भी नामी ग्रामी है, जब तक शूद्र से ब्राह्मण न बने तो देवता बन न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है कि हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर क्या होता है, फिर चले जाते। सुनेंगे कहेंगे हमको समझ नहीं आता था, धारणा पर चलेंगे, माया अटैक कर लेती है, फिर बाबा कहते हैं चले जाते हैं। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन कहाँ है, माया दुश्मन बोलो, माया दुश्मन कहाँ है बताओ, है या नहीं? जो भाई कहते माया दुश्मन कहाँ है, हाथ खड़ा करो। माया दुश्मन कहाँ है, यहाँ नहीं है, बाहर जाते सामने आ जाती, बाबा के घर में थोड़ी आएगी। माया दुश्मन सामने है, माया दुश्मन सामने खड़ी हैं तो वह अपनी तरफ खींच लेती हैं। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं जाना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाप भी पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, बाबा के पास जब बच्चे आते थे ना तो बाबा पूछते थे, बच्चे याद है पहले कभी मिले हो, जो कहते पहले मिले हाथ खड़ा करो। बाबा बहुत पक्के थे इस बात में, अभी हाथ तो करना सहज है, हाथ खड़ा करना, लेकिन बाबा इतने पक्के थे, देखते ही समझ आते थे इसको निश्चय है या नहीं है। तो जिनको निश्चय नहीं होता था ना, पता नहीं होता था, भूल जाते थे, बाबा के सामने गए तो हर बात को भूल जाते थे। बाबा पूछते थे बच्चे पहले कभी मिले हो, कहेंगे नहीं बाबा, फिर बाबा कहते अच्छा बच्चे याद करो पहले कभी मिले हो, बाबा मिले तो थे, फिर बाबा कहते याद करो, हाँ हाँ बाबा हमारी टीचर ने कहा था कि बाबा आपसे ये प्रश्न पूछेंगे कि बाबा से पहले कभी मिले हो, तो कहना 5,000 वर्ष पहले हम मिले थे। बाबा कहते तोता है ना, तोता पढ़ा देते, जो बोलेंगे वो सच बोलेगा, उसको कहेंगे तोते को गंगाराम नल पे मत बैठना, वो यही बोलेगा गंगाराम नल पे मत बैठना। तो बाबा समझ जाते थे, इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा पूछ सकते हैं बच्चों से पहले कब मिले थे, तो ये भी पक्का करना है ना, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाबा भी पूछ सकते हैं आगे कब मिले हो, कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। कोई भी जगह चले जाओ, कोई सत्संग में चले जाओ, कोई ऐसा तो पूछेगा नहीं, कोई को ऐसा पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे फिर से गीता सुनाने आना पड़े, आकर के रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं, अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है जो आधा कलप से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं है। अगर किसकी एक अंग भी थोड़ा बड़ा होगा तो उसको डॉक्टर्स क्या करते हैं, सर्जरी करके निकाल देते हैं। तो बाबा कहते ऐसे कभी कोई मनुष्य होता थोड़ी है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु की 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता ही नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये है एम एंड ऑब्जेक्ट विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को ही कृष्णपुरी कहते हैं। कृष्ण को तो 2 बाहें दिखाएंगे ना, उसको थोड़ी 4 बाहें दिखाएंगे। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं हैं, बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की। ये गीता पाठशाला है। बाबा क्या बताते, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, पाठशाला भी है। तो आज बाबा बता रहे हैं ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण, बाबा बताते हैं, अभी कभी बाबा गीता पाठशाला भी कह देते, ब्राह्मण तो जरूर चाहिए ना। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को भी रुद्र कहते हैं। अब बाप पूछते हैं ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का है। बाबा बच्चों से पूछते थे ज्ञान यज्ञ कृष्ण का है या शिव का। शिव को ही परमात्मा कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो, क्या कहते हो, बाप दादा। दुनिया में जाओ कोई किसको इकट्ठा नहीं बोलता बाप दादा। कभी कहेगा बाप से मिलने जा रहा हूँ, कभी कहेगा दादा से मिलने जा रहा हूँ, और यहाँ क्या कहते हैं बाप दादा से, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। अब बाप कहते हैं हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वह कहते हैं शिव शंकर। उन्होंने शिव शंकर को मिला दिया, लेकिन बाबा कहते हैं क्या बाप दादा। ज्ञान सागर तो एक ही है। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। बाबा बता रहे हैं अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बना तो दिया कि ब्रह्मा विष्णु बनता है, विष्णु ही ब्रह्मा बनता है, तो परंतु उसका अर्थ नहीं समझते ना। तो बाबा कहते हैं इसका अर्थ कोई भी समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए हैं। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा, शास्त्र दिए लेकिन बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। अब ब्रह्मा भी सुना सकता है क्योंकि मास्टर ज्ञान सागर उनके अंदर है। तो बाबा कहते ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं वह कोई यथार्थ नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले तो होते ही नहीं हैं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कलप है रावण राज्य रात और आधा कलप है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते, एक एक बात को बाबा बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके समझाते। बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं, तुमको राजयोग सिखाते हैं, जो संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे ना, द्वापर में गीता गाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। गीता ज्ञान सुनाया, उसके बाद तो स्वर्ग की स्थापना होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं द्वापर में गीता गाई, बाबा क्या बता रहे हैं, द्वापर में गीता गाई ये तो रॉन्ग हो जाता है, बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना में बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता था, ब्रह्मा का साक्षात्कार होता था, फिर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था, फिर उनको बताते थे जाओ ब्रह्मा के पास जाओ, तो ढूंढ ढूंढ करके आते थे। फिर यज्ञ जब भारत में आया तो यहाँ पर भी बहुतों को साक्षात्कार होते थे, ऐसे विदेश में भी अनेकों को साक्षात्कार होने लगे। तो बस ढूंढते थे ये सफ़ेद पोशधारी को देखा है। एक बहन बताती थी कि कैसे मेरे को ये साक्षात्कार हुआ, तो वो ढूंढते ढूंढते सेंटर पर कहीं गई तो उसको दिखाई दिया, बोला यही ब्रह्मा यही बाप है जिसको मैंने यही है जिसको मैंने साक्षात्कार में देखा। फिर वो बाबा की बन गई। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार शुरू में हुए हैं। अच्छा, जिनको साक्षात्कार हुआ हाथ खड़ा करो, है कोई ऐसा? एक, एक दो, तीन, चार, बस ठीक है, अच्छा है। लेकिन साक्षात्कार के साथ साथ पढ़ाई भी तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बहुतों को ब्रह्मा का श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा का सफ़ेद पोश ही देखते हैं, शिव बाबा तो है बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो कुछ भी समझ ना सके। बिंदी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, लाइट देखे, अरे क्या देखा, लाइट देखा, तो समझ तो नहीं सकेंगे ना। तो शिव बाबा ने फिर क्या किया, ब्रह्मा का साक्षात्कार कराया, श्री कृष्ण का साक्षात्कार कराया। बिंदी का साक्षात्कार हो कुछ भी समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा? आत्मा समझा, लेकिन आत्मा को देख तो नहीं सकते ना। अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं देखा। हमने भी तो सबने क्या है, समझा है ना, कोई ने नहीं देखा। ये तो वह तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। बाबा कई बार बताते हैं, अगर कोई हनुमान का पुजारी होगा उसको कुछ और दिखा दिया तो मानेगा ही नहीं, नाराज हो जाएगा। कोई कृष्ण का पुजारी होगा तो वो भी दूसरा दिखाएंगे तो वो नहीं मानेगा। तो बाबा कहते जिसकी जिसमें भावना होती है वही साक्षात्कार कराते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा रूप अगर देखें तो मूंछ पड़े, मूंछ क्या जाए, निश्चय खत्म हो जाए। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही हनुमान दिखाएगा ना, गणेश के पुजारी को वही दिखाई देगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी ये सब कहाँ गवाया? आप बताओ नासिक वाले कहाँ गवाया, बताओ अभी कौन से मंदिर में लगाया है, कौन सी गंगा में डाला है? पूजा करते ना नासिक में, तो बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ नासिक में कुंभ का मेला लगता है, इतनी पूजा करते हैं, कुंभ के मेले में बहुत आते हैं, बहुत सेवा करते हैं, और बच्चों ने सब कुछ मान लगा दिया। तो क्या कहते हैं, बच्चे होशियार हैं लेकिन बाबा उनके प्रश्न को भी समझ आते हैं। बच्चे क्या करते हैं, होशियारी से जवाब देते हैं, लेकिन बाबा समझ आते हैं, किया खुद काम, नाम लेंगे हम आपके मंदिर में लगा, अरे खाया पिया भी तो खुद ही है ना, खुद खाया मंदिर का भी तो सब खुद खाया ना, तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल थे, तुमको अनगिनत था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया, सब गवा दिया ना, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया, अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो। बाप तो कह सकते हैं ना, बाबा तो कह सकते हैं ना, ऐसे दूसरे किसी को बोलो तुम कंगाल हो भीख मांग रहे हो तो लड़ने लग जाएगा। तो बाबा कहते, बाप तो कह सकते हैं ना, क्यों बाबा ने इतना ऊंच बनाया और फिर कहाँ से कहाँ उतर गए, तो बाप तो कह सकते हैं ना, अभी सब कहाँ गवाया, तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व का मालिक बनते हैं, ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे। आप ड्रामा के हर एक सीन को ये पक्का कर लें कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, नहीं तो छोटी छोटी बात को लेके डिस्टर्ब हो जाते ना, ये क्यों, ये कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा भी जानते थे, बाबा के सामने कई बातें आती थी, बाबा सुन करके बहुत शांत हो जाते थे। तो कई बच्चे कहते बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, बाबा कहते ड्रामा अनुसार मैं अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक अपना पार्ट है और ड्रामा अनुसार वे आपे ही सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं तो उसमें रोने की क्या बात है। अब उसका ड्रामा में इतना ही पार्ट था, फिर रोने हैं, फिर कहेंगे फलाना चला गया है, क्यों चला गया, बाबा से पूछ के आना, अरे उसका पार्ट ही था। ऐसे ऐसे आते हैं, क्या बोलते हैं, फलाना बच्चा चला गया, अरे क्यों चला गया, बाबा से हमारा पूछ के आना, बाबा को बताना, रोते रहते। तो बाबा कहते उनको भी ज्ञान की गहराई समझ नहीं आई, कोई गया तो जरूर जाके अच्छा पार्ट बजाएगा ना, तो उनको अच्छे वाइब्रेशन दो, बार बार ये नहीं सोचो क्या हुआ, क्यों चला गया, उसको अभी जाना नहीं था, वो तो जाना ही नहीं था, लेकिन ड्रामा में उसका पार्ट था ना, इस बात का सबको पक्का करना है। फिर कहेंगे फलाना चला गया, उसका भोग लगा दो, भोग तो भल लगाओ लेकिन उस क्यों गया, कैसे गया, किस लिए, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए थे, ये बाबा से पूछो। अरे बाबा कहते हैं जो ऐसा कहता है ना, अभी उसको ड्रामा का ज्ञान पक्का नहीं है, तो इसलिए भोग जरूर लगाओ, अपने शुभकामनाएं भेजो और वो आत्मा जहाँ भी जाए खुश रहे, लेकिन इन बातों में अपनी अवस्था को डावाडोल नहीं करना है, ये बात का सबको बहुत बहुत ध्यान रखना है। और जितना आप शुभ वाइब्रेशन देंगे उतना वो आत्मा जाकर के पावरफुल बन करके और ही अच्छा पार्ट बजाएगी, इसलिए योगी आत्मा की यही निशानी है। तो इसलिए सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं कोई एक श्री छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है, सतयुग में तो कभी रोते नहीं हैं, अभी तुम मोह जीत बन रहे हो, मोह जीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहाँ तो मोह होता ही नहीं है। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं, बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं, लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप तो है ना, ओ गॉड फादर कहा, तो बाबा कहते जरूर नाम रूप तो है ना, नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज़ नहीं होती, चाहे हम उसको नहीं देख सकते, अब हवा है उसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हवा तो है ना। तो बाबा कहते हैं नाम रूप तो है ना, जिनको शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं, लिंग को शिव परमात्मा श्री बाबा भी कहते हैं, बाबा तो है ना बरोबर, बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे, बाप है तो जरूर बच्चे भी होंगे, बाबा के बच्चे जरूर होंगे। निराकार को निराकार आत्मा को बाबा कहते हैं। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा, फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा। मंदिर में जाते हैं भगवान हमारा पिता है, घर में आएंगे अपने लौकिक बाप को भी तो पिता कहेंगे ना, तो घर में आकर के उसको बाबा कहेंगे। अर्थ तो समझते नहीं हैं हम, उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, लोग शिव भगवान कहते हैं, हम क्या कहते हैं, बाबा के तो अर्थ नहीं समझते ना, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं। बाप बड़ी से बड़ी पढ़ाई, बाबा आकर कहते हैं हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, बाप बड़ी से बड़ी पढ़ाई दो अक्षर में पढ़ाते हैं, वो दो अक्षर कौन से हैं, अल्लफ और बे। सारी पढ़ाई का तंत्र अल्लफ और बे, अल्लफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बहुत बड़ा भारी इम्तिहान है, मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है, अब आगे पढ़ते जाएंगे फिर बैठ के पहले वाली थोड़ी जो ए बी सी सीखा था उसको याद करते हैं, उसको तो पक्का हो जाता है। तो बाबा भी कहते हैं आगे बढ़ते जाएंगे तो पढ़ाई का सार आता जाएगा, मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई थोड़ी याद करते हैं। पढ़ते पढ़ते आखिरी तंत्र पढ़ाई का सार बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, कहाँ पहले सुना फिर कहाँ उसका स्वरूप बनते हैं। तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं बच्चे मन मना भाव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद आए। बाबा हमेशा कहते हैं लास्ट में बाबा को याद करो, तो बाबा कहते आदत पड़ी हुई होगी तो उनकी बुद्धि में लास्ट में क्या होगा, बाप और वर्षा याद आएगा। अंत में फिर बाप कहते मन मना भाव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में बाप और वर्षा याद आएगा। मुख्य है ही ये, कौन सी बात, बाप और वर्षा। कितना सहज है ना, सहज, एक दो ही तो अक्षर हैं। उस पढ़ाई में भी अभी नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, आजकल की पढ़ाई कैसी है, इतनी हार्ड इतनी हार्ड इतनी महीन, पहले तो इतनी नहीं होती थी। तो बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसा राजा वैसा वह अपनी रसम चलाते थे। फिर बाबा बता रहे हैं आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था, पुराने जमाने में क्या चलता था, अभी कहेंगे किलो है क्विंटल है पता नहीं ये बताते, तो पहले क्या होता था, ये एक मन है, ये एक शेर है, ये एक पाव है। अभी भी हमको याद आता है कुछ समय पहले यही चलता था, मण है पाव है शेर है वो चलता, और अभी क्या कहेंगे क्विंटल है किलो है और पता नहीं पाव को क्या बोलते, ऐसे वगैरह के बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आगे मण शेर पाव का हिसाब चलता था, अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है, कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं। दिल्ली में जो चीज़ एक रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी दो रुपया शेर। आज देखो ना बॉम्बे जैसा शहर, महंगा शहर, वहाँ हर चीज़ महंगी, और गांव में जाओ तो वो चीज़ सस्ते में फ्री में मिल जाती है, और शहर में जाओ तो एक एक चीज़ की वैल्यू, इतनी से सब्जी होगी उसकी भी कीमत, गांव में जाओ इतनी सारी फ्री मिल जाएगी। तो बाबा क्या बताते हैं, दिल्ली में जो चीज़ एक किलो एक रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी दो रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूखा थोड़ी मारेंगे, प्रांत में प्रोग्रेस भी करते हैं, फिर उतना कमाते भी हैं, उतना खर्च भी करते हैं, कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है, भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 के चक्कर लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। कहा जाता है हीरे जैसा अमोलक जीवन कोड़ी बदले जाए, है ना, कहते ना हीरे जैसे अमोलक जीवन को क्यों कोड़ी के बदले गवा रहे हो। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, कहेंगे कई तो ऐसे भी हैं, लगे रहेंगे फिर उनका क्या होता, तो अपना स्वार्थ है, कहेंगे नहीं हम कमाएंगे ना, बाबा की सेवा में और लगाएंगे, गया कमाने जाके फंस गया, ना सेवा किया ना कुछ ज्ञान योग रहा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, अब तो बाप से वर्षा ले लो, पावन बनो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है ना कि तुम पावन थे, अब नहीं है, अभी है कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो जरूर पतित दुनिया का विनाश करूंगा, ऐसे थोड़ी पतित को भी रखूंगा पावन को भी रखूंगा, तो बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। इसलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है, ड्रामा में ये विनाश होने का ही है। अब ये ड्रामा का एक और सीन, ड्रामा में ये विनाश होने की नींद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा अपनी कहानी सुनाते हैं कि बाबा को पहले साक्षात्कार हुआ, नई दुनिया का नारायण का साक्षात्कार हुआ, तो बाबा तो बहुत खुश हो गए, लेकिन फिर जब विनाश देखा तो बाबा को फिर लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा कि इतनी बड़ी राजाय मिलनी है, इतना बड़ा राज्य मिलना, तो बहुत खुशी में होने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया, तो बाबा को विनाश का साक्षात्कार किया तो बाबा तो रोने लगे, ये क्या हो रहा है, सारी दुनिया का क्या होगा। तो बाबा बता रहे हैं पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी होने लगी। फिर विनाश का भी साक्षात्कार कराया शिव बाबा ने, तो बहुत धीरे धीरे ऐसा कराया ताकि वो समझ सके। मनमना भव मध्याच्छी भव, ये गीता के ही अक्षर हैं, कोई कोई अक्षर गीता की ठीक हैं। बाप भी कहते हैं हम तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, ये फिर प्राय लोप हो जाता है, कोई को भी पता नहीं लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था और कोई भी धर्म नहीं था, उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी हो गई। अभी जनसंख्या तो देखो कितनी बढ़ती जा रही ना, तो बाबा कहते हैं उस समय जनसंख्या भी कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है तो ये भी तो चेंज होनी चाहिए ना, इतना बढ़ता जा रहा है, साइंटिस्ट लोग भी परेशान है, अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ी तो मनुष्य न रह सकेगा न खा सकेगा, तो बाबा कहते अब ये चेंज होनी चाहिए ना, तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने आकर क्या किया ये भी नहीं जानते, शिव जयंती मनाएंगे क्या क्या प्रोग्राम करते लेकिन वास्तविकता को नहीं जानते, लेकिन शिव बाबा ने आकर क्या किया वह भी नहीं जानते। अब बाप समझाते हैं गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली, माता पिता कहेंगे ना गीता को माता पिता कहेंगे, जिससे तुम फिर से देवता बनते हो। सब शास्त्रों का माता पिता क्या है, गीता, जिससे तुम देवता बनते हो, गीता से ज्ञान से, गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये श्री कृष्ण बना। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो। किस बात का? कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। अब बाबा ने क्या पक्का कराया? इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। कई बातें सुन के जाते हैं और कई बातें सुनते ना भी सुनना पूछ पूछ करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है? अपनी अवस्था खराब, वातावरण खराब होता है। तो इसलिए बाबा कहते ध्यान रखना है, कोई भी तुम्हारे को उल्टी सुल्टी बातें ना सुनना है, अगर सुनेंगे तो खुद को नुकसान होगा ना। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा। बाबा कहते पूछते हैं तो पूछने दो, अरे उनको बोलो तुम पहले अपना तो कल्याण करो, ये कैसे होगा। अरे तुम खुद कहती हो कि वॉइसलेस दुनिया थी, बोलते ना कि पवित्र दुनिया थी, जब तुम कहते हो तो जरूर पवित्र होंगे। अरे तुम खुद कहते हो कि वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, तो फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। अब तुम जानती हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करेंगे। बाबा कहते भूलो नहीं, ये बाबा को नहीं कहो, बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कोई बात कर रहे हैं और बाबा को कहते हम आपको भूल जाते। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करेंगे, ये है ही पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं, आते ना कुंभ का मेला लगता है जब नासिक में, कितने आते, लाखों तो क्या, अभी तो करोड़ों आते हैं, आते ना करोड़ों है? कितनों की सेवा करने का मौका मिलता है। कुंभ के मेले पर कितने लाखों जाते हैं। अब कहते हैं वहाँ एक गुप्त नदी है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? नदी तो नदी है, नीचे है तो सही ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहाँ आती है। बाबा ने एक बार बताया था कैसे पानी ऊपर से आता है, कहते हैं गंगा यहाँ से आती है। अरे गंगा तो अपना रास्ता लेकर के समुन्द्र में जाएगी, कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर कैसे आएगी, पहाड़ पर थोड़ी चढ़ता, पानी तो ऊपर से नीचे आता है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में कितने धक्के हैं, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, एक है हद का वैराग्य और दूसरा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, यहाँ तो वह बात ही नहीं। यहाँ तो बाबा कभी नहीं कहते जंगल में जाओ, जंगल में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ तो जंगल रहा ही नहीं अभी। यहाँ तो बाबा कहते हैं यहाँ आते हैं तपस्या करो, घर में बैठ करके योग करो और घर में रहते हुए ही विकारों का त्याग करो, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य कौन सा है, बताओ। राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य कौन सा है? पढ़ना और पढ़ाना, ये बाबा ने काम दिया है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, जंगल में जाके थोड़ी, राजयोग मीन्स परिवारों में रह के सीखेंगे। अब राजयोग जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो शिव बाबा से, पढ़े हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ सिखाते। शिव बाबा से बच्चों ने सीखा, बच्चे जाकर के औरों को सिखाते हैं। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ सिखाती, एक शिव बाबा ही थोड़ी सबको बैठ सुनाएंगे। बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, दादियों को तैयार किया, दादियों ने जा करके जगह जगह ज्ञान गंगा बहाई। शिव बाबा कहते मैं थोड़ी बैठ करके सबको सुनाऊंगा, सुनाने वाले कौन हैं, तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़ी बैठ सिखाएंगे। ये तो ही पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर, यहाँ तुम कितना शांति में बैठे हो, बैठे हो ना शांति में, कितना अशांति है, कोई वही भी बात की चिंता नहीं, बाबा है, बाबा अपना काम कर रहा है, वहाँ तो अनेक हंगामे हैं। बाबा के पास थे जब यज्ञ की स्थापना के टाइम, जब पार्टीशन के टाइम बाहर क्या क्या हो रहा था, और बाबा के बच्चे तो कितना शांति से बैठे हुए थे। तो बाबा कहते हैं बाहर तो अनेक हंगामे हैं, बाप कहते हैं पांच विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा, मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है, बच्चों ने विनाश का भी साक्षात्कार किया है। शिव बाबा ने विनाश का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा को भी दिखाया और बच्चों को भी दिखाया। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने भी विनाश का साक्षात्कार किया, अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लग जाओ। टाइम के लिए बाबा बार बार ध्यान खिंचवा, अब टाइम बहुत थोड़ा है इसलिए याद की यात्रा में लग जाओ। तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे, बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा, पहला है बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है, कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा, कोई भी उल्टी सुलटी बातें सुनकर संशय में नहीं आना है, कोई भी उल्टी सुलटी बातें सुनकर संशय में नहीं आना है, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल लेना है। वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भाव, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भाव। बाबा ने बताया हर एक आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी रूपी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, दूसरों को स्मृति दिलाने से आप भी विशेष आत्मा बन जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपा देगा, टाल देंगे, आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन, नाम मान शान व साधनों का संकल्प से ही त्याग महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग महान त्याग है। आज का अव्यक्तिशारा, अव्यक्तिशारे का जो टाइटल चल रहा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, तो इसका एक्सप्लेनेशन है। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी, निर्णय ठीक तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। दीदी का महीना चल रहा है तो दीदी जी की तो अनेक विशेषताएं हैं, आज फिर एक और विशेषता सुनेंगे। आज है 30 तारीख, ईश्वरीय नियम और मर्यादों की संपूर्ण पालना। ईश्वरीय नियम और मर्यादों की संपूर्ण पालना, कल आज तो कल भी शत्री। अच्छा, ईश्वर नियम और मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है। कोई कोई मर्यादा का संकल्प में भी उल्लंघन नहीं करना है। मर्यादाएं हमारी रक्षा करती हैं, इसलिए इसमें कभी भी बेपरवाह नहीं बनना है। जो मर्यादा की परवाह करते हैं बाबा उनकी परवाह करता है। हमारे मुख्य चार नियम हैं, ब्रह्मचर्य, सत्संग, शुद्ध अन्न और दैवी गुण। तो हम अपने में चेक करें कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। कर्मणा में तो नहीं आते, लेकिन मनसा में भी संकल्प ना आए। सदैव संग दोष से बचे रहें, सदैव याद रहे कि हमें एक की सुननी है, एक को ही अपना दिल देना है, एक को ही दिल में बसाना है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी देख रहे हैं भट्टी वाले कि बाहर का मौसम थोड़ा खराब है, तो आपका जो ग्रुप फोटो था शायद वो अभी नहीं होगा। तो और दूसरी बात, भट्टी के भाई बहनों के लिए सोच रहा है कि वैसे भी सभी भाई बहनों के लिए कभी कभी बच्चे आते हैं, पूछते हैं हमें बाबा का, शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का सबके फोटो चाहिए, स्लोगन चाहिए, और लक्ष्मी नारायण एडवांस पार्टी के कई प्रकार के मांगते रहते हैं, जैसे बाबा मम्मा और दादियाँ एडवांस पार्टी हिस्ट्री हॉल के चित्र और शिव बाबा स्लोगन आदि। जिस किसी को कुछ भी चाहिए तो वह फोटोग्राफी डिपार्टमेंट से प्राप्त कर सकते हैं। फोटोग्राफी डिपार्टमेंट है दूध डिपार्टमेंट के नीचे, और उसके टाइम है सुबह 8:30 से लेकर के 12 बजे के बीच में, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। अच्छा, भट्टी वाले सब हाथ खड़ा करो, सब ठीक हैं, आराम से हैं? अच्छा, ऐसा तो नहीं जैसे वहाँ जाते कुंभ के मेले में कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। बाबा ने तो कितना अच्छा स्थान दिया, ऐसा स्थान कहीं मिलेगा है कोई ऐसा स्थान? बाबा के घर जैसा स्थान कोई नहीं है, सब खुश है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप देख रहे हैं बरसात का टाइम है, सब अपने साथ छतरी लाए कि नहीं लाए? लाए ना, छतरी लाए हैं। और फिर तीसरी बात है, कभी कभी थोड़ी बारिश आ जाती ना, दौड़ते हैं, किसी को दौड़ना नहीं है, धीरे चलो, क्योंकि कभी फर्श गीला होता है, कभी डाइनिंग हॉल में जाते वहाँ पर भी कभी पानी गिरा हुआ है, कोई गीला होता है तो पाँव फिसलता है, सीढ़ियाँ उतरते हैं चढ़ते हैं, तो भी धीरे धीरे चलना है और बहुत आराम से चलना है, आवाज़ भी नहीं करो और बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे चलो, और छतरी का प्रयोग करो। और फिर कभी कभी क्या करते हैं, सुबह अमृत वेले के बाद, योग के बाद क्या करते हैं, सोचते हैं कि मौसम अच्छा, चक्कर लगा के आए। चक्कर लगाने जाते हैं नक्की लेक की तरफ, अकेले चल पड़ते हैं। वहाँ पर क्या होता है, आपको कौन मिलेगा, कभी कभी भालू आ जाएगा, बड़ा खुश हो जाएगा, ऐसा राजयोगी कहाँ मिलेगा। तो इसलिए अकेले कभी नहीं जाना है, अंधेरे में कभी नहीं जाना है, जाना भी हो तो तीन चार लोग मिल करके जाओ, अकेले नहीं जाओ। और जाते थे वहाँ जाकर के आवाज़ नहीं करो, शांति से जाओ और चक्कर लगा के आओ। अंधेरे में नहीं जाना क्योंकि मौसम खराब है, और कभी कभी बाबा तो बहुत अच्छे अनुभव करा देते हैं, सूक्ष्म वतन के आओ तो यहीं देख लेना। इतनी फॉग होती है कि यहाँ खड़े हैं तो सामने वाला दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म वतन के बारे में पूछते रहते ना, तो वो अनुभव भी यहाँ बाबा करा देते हैं। ठीक है सब, अच्छा। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम